ओम शांति। आज का अभी का विषय है चित्त शुद्धि। आज मम्मा का डे है और आज जो मुरली चली वो किसकी मुरली होती है? आज के दिन मम्मा की मुरली। तो आज की मुरली का टाइटल क्या था? माया के विघ्नों से पार होना है तो चेकिंग पावर से सावधान रहना है, संभल कर रहना है, फिसलना नहीं है। और साथ साथ मम्मा का मास होता है उसके निमित्त मधुबन से मम्मा की विशेषताएं स्पेशली भेजी जाती है सेवा केंद्रों पर, जिसको क्लास में रोज एक या दो पॉइंट पढ़कर सुनाए जाते हैं। तो इस बार भी जो सर्कुलर गया मम्मा डे के निमित्त जो पॉइंट्स भेजे गए उसमें दो तरीके के पॉइंट्स थे। एक पॉइंट थे कि दादियां बता रही हैं मम्मा के प्रति कि मम्मा की क्या विशेषताएं हैं, और दूसरे पॉइंट्स थे अलमाइटी क्या कह रहे हैं मम्मा से। वो करीब 16 पॉइंट थे है मतलब। और हम ऐसे जस्ट पेज पलटा रहे थे उसका, लास्ट में लास्ट वाला पॉइंट पढ़ा, उस लास्ट के दो पॉइंट, तो उसमें देखा कि उसमें बता रहे हैं कि ज्ञानी का क्या काम होता है, किसी के भी अवगुण को अपने चित्त पर नहीं रखना है। उसी चित्त वाली बात को आगे वाले लास्ट पॉइंट में लिया और बताया कि पिताश्री जो है आपका, मतलब अलमाइटी कर रहा है, कह रहा है राधे बेटी से कि जो तुम्हारा पिताश्री है बच्चों में इतने अवगुण देखता है परंतु चित्त पे नहीं ठहरने देता है। और क्यों नहीं ठहरने देता है तो उसका कारण बताया कि वो पिताश्री देख रहा है कि बच्चे अपने इन अवगुणों को निकालने के लिए परिश्रम कर रहे हैं। तो जो खुद ही परिश्रम कर रहे अवगुणों को निकालने के लिए कि मेरे में से अवगुण चला जाए, फिर पिताश्री क्यों रखेगा अपने पास उस अवगुण को? और यही कारण है कि पिताश्री उसको अपने चित्त पे ठहरने नहीं देते हैं। यहां तक कि एग्जाम्पल दिया दुनिया का कि जब एक सर्जन एक पेशेंट की व्याधि को ठीक करता है, उसके निमित्त बना है वो, उसकी व्याधि को ठीक करने के निमित्त बना है एक सर्जन, तो वो पेशेंट की व्याधि को अपने सिर पर नहीं रखता है। पेशेंट आया ही है व्याधि से मुक्त होने के लिए, फिर मैं क्यों रखूं उसको अपने पास? हाँ? तो जब बाबा के अंदर ये भाव होता है पिताश्री के अंदर, तो अलमाइटी ने कहा इसलिए पिता का हृदय बहुत निर्दोष है, पवित्र है। और इसी से हमें प्रेरणा मिली कि हमें भी अपने चित्त को इतना ही पवित्र निर्दोष बनाने की जरूरत है। जब मम्मा डे है आज और मम्मा को अलमाइटी ने ये बात कही आज, और खुद मम्मा ने भी कहा कि चेकिंग पावर से सावधानी रखना है, संभल कर रहना है कि कहीं माया के विघ्नों से हम लड़ न पड़ जाए, बल्कि उससे हमें क्या होना है, पार हो जाना है। तो टॉपिक है चित्त शुद्धि। अब ये दो शब्द है, एक है चित्त, दूसरा है शुद्धि। तो क्या होता है चित्त शुद्धि और क्यों आवश्यक है? अब मैं आपसे पूछूं, स्वर्ण शुद्धि क्या होती है? सोने की शुद्धि माना क्या होती है? सोने को इतना तपाना कि जो सोने की डेली है, मतलब उस डेली को तपाएंगे ना, तो वो जो सोने की डेली है उसमें प्योर सोना भी है और कुछ मिलावट भी है, तो इतना उसको तपाया जाए कि जो प्योर सोने के अलावा जो अलॉय आई हुई है, जो खाद आई हुई है, जो अन्य धातु है, वो क्या हो जाए, उसमें से अलग हो जाए और मेरे हाथ में क्या रह जाए, प्योर सोना रह जाए। और स्वर्णकार बताते हैं पहले के जमाने में तो यही मेथड थी, आजकल तो बहुत अलग अलग मेथड है। तो जब सोना बिल्कुल प्योर हो जाता है, उसकी चमक सूर्य के चमक की भांति चमकती है, ऐसा प्योर सोना होता है। तो क्यों किया हमने सोने को शुद्ध, क्यों किया? एक तो भाई सोने की शुद्धि कैसे होती, तो तपाया, पर क्यों किया? चमक बढ़ जाएगी और उससे सौंदर्य बढ़ जाएगा, उससे रिफ्लेक्शन आएगा। ऐसे ही हीरे को क्यों तराशा जाता है, हीरे को क्यों तराशा जाता है? क्योंकि हीरे के अंदर कहीं कहीं दाग होते हैं, तो जो हीरे को तराशने वाला होता है वो दो काम करता है। एक तो हीरे को प्रॉपर कट प्रदान करता है और दूसरा उनके जो दाग है, जो फ्लॉज है, उनको निकालता है। क्यों निकालता है, क्यों कट देता है? तो कहा जब उस पर प्रकाश डलता है तो जितने ज्यादा कट होंगे उतने अलग अलग एंगल से वो प्रकाश बाहर आएगा। और अगर अंदर कोई दाग है तो फिर उस हिस्से से प्रकाश निकलना रुक जाएगा, और इसलिए उसका जो सौंदर्य होना चाहिए था, उसकी जो चमक होनी चाहिए थी कि हर एंगल से उसका चमक बाहर आए, वो नहीं हो सकता है। तो क्यों तराशा जाता है हीरे को? चमकदार बनाने के लिए, बेदाग उसको इसीलिए बनाया जाता है। ऐसे ही एक शिल्पकार क्यों चलाता है हथौड़ी छेनी एक पत्थर पर, एक चट्टान के टुकड़े पर? हाँ, क्यों चलाता है? ताकि उसमें जो वेस्ट हिस्सा है, जो अननेसेसरी है, जो व्यर्थ है, जो फालतू है, अगर उसको निकाल दिया जाएगा तो अब वो पत्थर पत्थर नहीं रहेगा, अब वो प्यारी सी मूरत हो जाएगी। ठीक ऐसे ही क्यों हमें चित्त शुद्धि करनी है, तो इसमें दो बातें समझनी होगी। हीरा तो समझ में आ रहा था, पत्थर भी समझ में आता है, सोना भी समझ में आता है, और उसके बाद शुद्धि, वो सब समझ में आ गया। पर यहां पर दो शब्द है चित्त शुद्धि। आज ही दोपहर में एक बहन ने हमें कहा कि बहन जी ये चित्त क्या होता है थोड़ा स्पष्ट करना। कौन बहन है वो जिसने ये प्रश्न पूछा मुझे? कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड, ये अंग्रेजी शब्द है नहीं? जैसे परम आत्मा, तो अंग्रेजी शब्द सुप्रीम सोल, वो कोई मीनिंग नहीं बता रहा, वो सिर्फ ट्रांसलेशन दे रहा है ना? तो ऐसे ही हिंदी में हम कहते हैं मन और चित्त, ये दो शब्द कहते हैं। उसी मन और चित्त को अंग्रेजी में कह दिया, मन के लिए कहा कॉन्शियस माइंड और चित्त के लिए कहा सब कॉन्शियस माइंड। अब फिर तीसरा प्रश्न उठता है कि ये अनकॉन्शियस माइंड क्या है? तो फिर भाई दो का तो पता चल गया, मन और चित्त, तो अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है? पहले मैं आपसे पूछती हूँ, कई बार चक्कर आकर कोई व्यक्ति गिर जाता है, तो कई बार हम बोलते वो तो बेहोश हो गया, हम ये नहीं बोलते मर गया। दो चीजें हो सकती है ना, कोई चक्कर खा के गिरा तो दो चीजें हो सकती, या तो बेहोश या तो मर गया। लेकिन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि ये मरा नहीं है, ये बेहोश है? नब्ज चल रही है, सांस चल रही है, पर होश नहीं है, तब कहते हैं कि बेहोश पड़ा है, अनकॉन्शियस हो गया, ही गॉट फेंट, इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं ना। तो अनकॉन्शियस क्लियर हो गया, जिसको कहा कि अगर रामायण का उदाहरण ले तो हनुमान को संजीवनी बूटी क्यों लानी पड़ी थी? लक्ष्मण अनकॉन्शियस हो गया था, मूर्छित हो गया था, तो उसको कहा कि संजीवनी बूटी लेकर आओ, उसको जब उसको सुघाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? सुरजीत हो जाएगा। तो क्लियर हुआ बहन जी आपको? अनकॉन्शियस माइंड किसको बोलते हैं, कॉन्शियस माइंड किसको बोलते हैं, और सब कॉन्शियस। अब इसका थोड़ा सा और खुलासा कर लेते हैं, क्योंकि अगर हिंदी में उसको मन और चित कहा तो मन तो कई बार समझ में आता, कई बार क्या, क्योंकि ब्राह्मणों का पहला ही लेसन हमें बता देता है मन बुद्धि संस्कार, और वही डेफिनेशन दे दी जाती है मन की, पर चित्त की डेफिनेशन कोई देता नहीं है। तो इसलिए बहुत बार प्रश्न उठते रहते हैं, चित्त होता क्या है, ये चित्त होता क्या है? अंग्रेजी शब्द देखे तो सबकॉन्शियस माइंड, और अंग्रेजी सबकॉन्शियस माइंड का अर्थ क्या होता है, या कॉन्शियस माइंड का अर्थ क्या होता है? तो कहते हैं दो मन होते हैं, एक ऊपरी मन, एक नीचे वाला मन, या एक बाहरी मन और एक भीतर वाला मन, आंतरिक मन। बाहरी मन को बोला मन और आंतरिक मन को बोला सबकॉन्शियस मन, चित्त, इसको कॉन्शियस बोला बाहरी वाले को। अब बाहरी और आंतरिक भी कई बार कंफ्यूजन में पड़ते, होता क्या है बाहरी और आंतरिक, है ना? इसीलिए हर चीज को और जब तक खुलासा नहीं करते हैं तो प्रश्न उठते रहते हैं, और फिर वो बात समझ में नहीं आती कि करना क्या है हमें। अब बाहरी मन और अंतर मन में क्या, कैसे समझेंगे इसको? तो देखो, जब तक हम ज्ञान में नहीं आए थे हमारे लिए यही सब कुछ था, इसको ही मैं बोलना है, इसको ही मेरा बोलना है, जो कुछ है यही है। लेकिन ज्ञान में आए तो बाबा ने बताया कि बच्चे ऐसे नहीं होता है, ये मेरा है और मैं तो इससे कुछ अलग है, और वो क्या है, वो आत्मा है। तो पहले से पता था शरीर होता है, ज्ञान में आए पता शरीर है और आत्मा है, फिर गहराई में चले तो पता चला आत्मा के पास फैकल्टीज है, मन बुद्धि संस्कार, है ना? और इसके पास भी क्या है, शरीर के पास इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं और ज्ञानेंद्रियां हैं। अब ये तो बाहर शरीर में है, स्थूल शरीर में है ना ये, लेकिन मन किधर है? मन तो भीतर है, भी इस शरीर में तो नहीं है, इस शरीर के भीतर, और इस शरीर के भीतर माना इधर है आत्मा, इधर है शरीर, और इधर बीच में है मन, ठीक है? अब हमने क्या बोला, बाहर वाले मन को मन बोला या कॉन्शियस माइंड बोला, और अंदर वाले मन को चित्त बोला या सबकॉन्शियस माइंड बोला, ठीक है? अब इधर शरीर है, इधर आत्मा है, ये बाहर वाला हुआ ना, बाहर शरीर दिख रहा है ना, और ये वाला क्या हुआ, अंदर वाला हुआ। तो जो मन का हिस्सा आत्मा के करीब है, ये आत्मा के करीब हो गया ना इधर वाला, और ये वाला किसके करीब हो गया, शरीर के करीब हो गया। तो मन का वो हिस्सा जो शरीर के करीब है उसको मन कहा गया, उसको कॉन्शियस माइंड कहा गया, और मन का वो हिस्सा जो आत्मा के करीब है उसको सबकॉन्शियस माइंड कहा गया, उसको चित्त कहा गया। अंग्रेजी में इसका उदाहरण देते हैं, आइसबर्ग का, हिम शिखा का, कि समंदर में जो हिम शिखा दिखाई पड़ती है, जो आइसबर्ग दिखाई पड़ता है, उसका सिर्फ 10% ऊपर दिखाई पड़ता है, 90% तो नीचे होता है। तो मन की शक्ति जो बाहर के दुनिया से जुड़ी है वो तो थोड़ी सी शक्ति है, लेकिन जो अंदर आत्मा के साथ कनेक्टेड है ज्यादा, उसके पास बहुत शक्ति है। वैसे भी जैसे सिक्का होता है ना, कई बार गेम खेलते हैं तो कौन शुरुआत करेगा, तो सिक्का उछाल के तय किया जाता है, चित या पट है। अंग्रेजी में हेड और टेल होता है और हिंदी में होता है चित या पट। तो आपने जो बोला अगर वो आया, मना आप जीत गए और आप जो चूज करना चाहो आप चूज करो, तो किसको चित बोलते हैं, किसको पट बोलते हैं, बताओ। सिक्के में भी चित किसको बोलते हैं, पट किसको बोलते हैं, बोलो। चित किसको बोलते हैं, जिस तरफ चित्र होता है, मूर्ति कहो चित्र कहो, सिर्फ शेर की मूर्ति नहीं, कई बार तो जितने भी शासक हुए उन्होंने अपनी चित्र डलवाया उसमें, सिक्कों में, है ना। तो जिस तरफ चित्र है वो है चित्त, और जिस तरफ अंक है, भाई ये कितने का सिक्का है, वो हो गया मन, सॉरी पट। और पट माना क्या होता है, स्कूल में पढ़ते थे ना, श्याम पट पर लिखा जाता था, ब्लैक बोर्ड, यही होता था, अर्थात एक स्क्रीन जिस पे कुछ लिखा जाए, लेकिन वो स्क्रीन लिमिटेड है, लिमिटेड है। सर लिखते जाएगा बोर्ड भर जाएगा, सॉरी उसको फिर मिटाओ और फिर लिखो, फिर भर जाएगा फिर मिटाओ फिर लिखो, लिमिटेड स्पेस है उसमें। तो पट माना इसीलिए का अंक लिखा पड़ा है उसमें, कोई लिमिट अंक होगा ना। और उस तरफ तो क्या है, मूर्ति है, उस तरफ तो चित्र है। तो हमारे मन में भी क्या होता है, ये आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा, हाँ कुछ वस्तु खाते हैं उसके द्वारा, नाक से गंध लेते हैं, त्वचा से स्पर्श का अनुभव करते हैं, ये सारा डेटा मन रूपी स्क्रीन पे ही तो जा रहा है, लेकिन कितनी देर के लिए, अभी जैसे हम क्लास सुन रहे हैं, ठीक है, जो लाइन अभी चल रही है वो मन रूपी स्क्रीन पे बराबर छप जाती है, लेकिन दूसरी चलते चलते पहली वाली गायब हो गई, क्या बोला था मालूम नहीं। समझ में आ रही बात, लिमिटेड स्पेस से एक आएगा, लेकिन दूसरा आने के लिए उस पहले वाले को हट जाना है, फिर दूसरे को हट जाना है, तब तीसरे वाला आएगा, लेकिन ये वाले पट से तो हट गया, लेकिन अंदर वाले में जाके बैठा है वो। यही तो कारण है कि एग्जाम के दिनों में, क्योंकि पूरे साल भर हम पढ़ाई कर रहे थे, धीरे धीरे आगे बढ़े थे, एक किताब उठाई थी, आज पहला पाठ पढ़ाया जाएगा, फिर दूसरा पाठ, तीसरा पाठ, वो हम लिखते जा रहे थे नोटबुक में, लेकिन जब एग्जाम की छुट्टियां मिली तब तक तो लास्ट चैप्टर वाला ही ध्यान था, बाकी तो ध्यान में ही नहीं था। अरे बाप रे, कैसे एग्जाम दूंगा, मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा है, भले यहां नहीं याद आ रहा है लेकिन नोटबुक में भर के तो रखा है, लाओ खोलो उसको सामने। और जैसे ही खोला वो एक एक पढ़ते जा रहे, हाँ मैम ने ऐसे पढ़ाया था, टीचर ने ऐसे पढ़ाया था, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब वो स्टोर हो गया। यही तो एक फिल्म में होता है, और क्या होता है, स्क्रीन है जिसपे एक के बाद एक सीन आ रहे हैं, लेकिन आ कहां से रहे हैं, स्क्रीन पर एक सीन, उसके बाद वो चला गया तब दूसरा आ रहा है, सारे के सारे सीन इकट्ठे नहीं है वहां पे, एक आया फिर दूसरा आया फिर, लेकिन वो सारे के सारे किधर इकट्ठे हैं? वो हार्ड डिस्क में, वो कैसेट में। तो चित माना जो स्टोरेज है, जो भंडारण है। हाँ, किचन में भी हम कुछ काम करते तो बोलते हैं ना, स्टोर रूम है, क्योंकि सब कुछ थोड़ी रखेंगे किचन में। हाँ, साल भर का स्टॉक किचन में रखा जाता है क्या? नहीं, जो रोज रोज बनता जाएगा थोड़ा थोड़ा, 10 दिन 15 दिन का, एक महीने का, बाकी तो स्टोर रूम है, जब जरूरत है वहां से लेंगे। तो चित्त भी स्टोर रूम है, और स्टोर रूम में जो स्टोर हो गया है वहां से, वो वहीं पड़े रहने के लिए थोड़ी स्टोर किया गया है, जरूरत के समय पर लेकर आएंगे उसको वापस किचन में, लाएंगे कि नहीं लाएंगे। तो पट से मतलब मन से ही उधर गया है, लेकिन वापस वो मन पे आएगा, स्टोर रूम है। तो ऐसे इस चित्त पे बहुत सारा स्टोरेज है, बहुत सारा स्टोरेज। जो जो हमने कर्म किए, ये तो बताया ना पहले दिन के लेसन में, जैसे जैसे हम कर्म करते हैं वैसे वैसे हर कर्म की छाप आत्मा पर पड़ती है। आत्मा पर पड़ती माना एक्चुअली चित्त पर पड़ती है, क्योंकि आत्मा तो पवित्र है। बाबा कहते हैं, भल बाबा कहते हैं कि आत्मा पतित हो गई है, लेकिन दूसरी तरफ बाबा ये भी तो कहते हैं, बच्चे तुम तो हो ही पवित्र। समझ में आ रही बात कि तुम पवित्र हो, लेकिन ऊपर से कोई लेयर है, जैसे सूर्य है गगन में, लेकिन बीच में बादल आ गए हैं। कोई बादल सूर्य को चिपके हुए हैं क्या? बादल सूर्य को चिपके हुए हैं क्या? नहीं। कोई आसमान को चिपके हुए हैं क्या? नहीं। अगर बादल आसमान को, सूर्य को चिपके हुए होते ना, तो बादलों के पार जाकर विमान चलता नहीं। और इसीलिए कई बार आपने अगर विमान यात्रा की होगी, मौसम ऐसा है जहां बादल छाए हुए हैं, तो आप खिड़की से अगर झांक कर देखना तो आपको दिखाई देता है बादल मेरे नीचे है, दिखता है कि नहीं? लेकिन फिर भी विमान उसको भेद कर ऊपर चला गया है, और वहां पर उसको थोड़ी ज्यादा पावर की आवश्यकता होती है, और थोड़ा झटका भी लगता है। और इसीलिए ऐसे समय में खास कहा जाता है, यात्रीगण बेल्ट पहन लीजिए, कोई खड़ा नहीं रहेगा। हम लोग जब वो टेक ऑफ करता है उस समय भी यही रहता है कि बेल्ट बंधे रहे, फिर बाद में टेक ऑफ हो गया है और अब एक नॉर्मल स्पीड में चल रहा है, तब हम नीला छोड़ देते हैं। फिर लैंडिंग होगी, फिर से अनाउंसमेंट होगी। समझ में आ रही ना बात? क्योंकि नीचे गुरुत्वाकर्षण है, वो उसको खींचेगा, और इसलिए उसमें कुछ हो सकता है। बीच में बादल है, वो कुछ हो सकता है टकरा के, लेकिन अगर उससे पार चला गया, गुरुत्वाकर्षण से पार चला गया, अब उसको उतनी एनर्जी नहीं देनी पड़ती है, क्योंकि ऊपर तो हल्का होकर वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन नीचे का जब तक ग्रेविटेशनल फोर्स पुल, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति, क्योंकि वो हैवी है, और पृथ्वी भी अपने आप में हैवी है, जड़ है, और नियम कहता है कि हर जड़ वस्तु अपने तरफ जड़ को खींच लेती है, तो कितना बड़ा विमान होता है। हम तो हाथ में अगर ये पकड़ ले और ध्यान हटा तो नीचे ही गिरेगा, कोई ऊपर उछलेगा क्या? तो कितना भार होगा इसका। लेकिन इसके कंपैरिजन में, इसकी भेंट में, इसकी तुलना में एक विमान का कितना वेट होता है? अब सोचो कितनी उसको फोर्स देनी पड़ती होगी। इसीलिए तो फ्यूल चाहिए होता है ना इतना, और वो फ्यूल भी कैसे चाहिए होता है, वो ईंधन भी कैसा चाहिए होता है, प्योर चाहिए होता है। बाकी के व्हीकल्स में थोड़ा इम्प्योरिटी होगा चल जाएगा कहते, लेकिन विमान माना जहां ऊंचाई पर चढ़ना है, इतने सारे ग्रेविटेशनल फोर्स को क्रॉस करना है मुझे, तो वहां पे प्योर रिफाइंड फ्यूल चाहिए, ईंधन उसका कैसा होना चाहिए, बिल्कुल पवित्र होना चाहिए। तो ऐसे ही जो हम बात कर रहे थे कि ये जाके किस पर जाता है सब कुछ, जो स्टोरेज होगा चित्त पर जाएगा। और इसीलिए कहा इधर है मन, इधर है शरीर, इधर है आत्मा, ये बीच में है। ठीक है, जैसे कहा ना सूर्य कोई चिपक के थोड़ी रहता है बादलों के, चिपक के नहीं रहता है ना, ऐसे आत्मा कोई इसको चिपक के थोड़ी है। यहां पे जो चित्त है अभी, यहां से इंद्रियों से इधर मन के पास डेटा आया, पर मन तो पट है, स्क्रीन है, ज्यादा एक टाइम पे स्टोर थोड़ी कर सकता है, तो कहां चला जाएगा? चित्त पे चला जाएगा। अब चित्त अपने आप में प्रकृति की बहुत सुंदर सात्विक रचना है, वो भी जड़ ही है, प्रकृति की रचना है, वो सात्विक रचना है। लेकिन जैसे ये शरीर में भी आत्मा प्रवेश करती है, इसकी जड़ता चली जाती, चैतन्य महसूस होता है, ऐसे वो चित्त को भी आत्मा की शक्ति मिलती। तो मेनली आत्मा की शक्ति जो पूरे शरीर को भी मिल रही है, तो पहले कहां से क्रॉस कर रही है? चित्त से क्रॉस करते हुए आ रही है। समझ में आ रही है बात? एक बल्ब है, बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है और वो फिलामेंट के चारों तरफ ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा हुआ है। मैंने स्विच ऑन किया, फिलामेंट प्रकाशित हुआ। प्रकाश किस में आया है? अब वो फिलामेंट का प्रकाश उस कांच को प्रकाशित कर रहा है। समझ में आ रहा है? स्विच ऑन करने से कांच प्रकाशित नहीं हुआ है, कौन प्रकाशित हुआ है? फिलामेंट प्रकाशित हुआ है। और उस फिलामेंट का प्रकाश आगे बढ़ते हुए जो उसके रास्ते में कांच है उसको प्रकाशित कर गया। तो हमको लगता है कि वो कांच प्रकाशित प्रकाश दे रहा है, प्रकाश कौन दे रहा है? फिलामेंट। वो भी कब दे रहा है? जब स्मृति का स्विच, मतलब स्विच ऑन किया है। समझ में आ रही बात? और फिर ये कांच चूंकि अगर ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है, साफ सुथरा है, स्वच्छ है, तो प्रकाश फिलामेंट के प्रकाश ने जिस कांच को प्रकाशित किया है वो प्रकाश उसको भी भेद कर आगे बढ़ रहा है। जो वस्तुएं हैं रखी उन पर प्रकाश पड़ रहा है और इसीलिए हम कमरे में रखी हुई वस्तुओं को देख पाते हैं। हम चलते हैं जब यात्रा पे, रात में अगर कई बार ट्रैवलिंग करनी होती है अपने व्हीकल से, तो व्हीकल में सामने लाइट क्यों लगी होती है? दिन में क्यों नहीं चालू करते हम लाइट, क्यों रात को ही चालू करते हैं? क्योंकि दिन में तो सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, रास्ता आदि सब कुछ दिख रहा है, बच्चों की रात में सूर्य का प्रकाश नहीं है, और जब तक प्रकाश नहीं पड़ेगा किसी चीज पर वो मुझे दिखाई नहीं पड़ेगी, और दिखाई नहीं पड़ेगी तो मैं समझूंगा कैसे, मुझे किस तरफ गाड़ी को ड्राइव करना है, कौन रास्ते में है, मुझे थोड़ा सा साइड होना है, पता कैसे चलेगा? तो वो उन वस्तुओं पर प्रकाश डाले पड़े, इसके लिए गाड़ी में व्यवस्था की गई है कि अंधेरे के समय जब सूर्य का प्रकाश नहीं उपस्थित है तो हमने अपना प्रबंध कर लिया ताकि ये प्रकाश उन पर पड़ता जाएगा, वो ज्यादा दूरी तक नहीं होता है, जबकि सूर्य का प्रकाश तो, लेकिन वो हमारे को ज्यादा दूर चाहिए भी नहीं ना, क्योंकि जैसे जैसे आगे जाएगा आगे आगे और प्रकाशित हो जाएगा। तो मेरा जो पर्पस था वो तो, मेरा उद्देश्य तो पूरा हो जाता है ना। तो ऐसे ही फिर ये चित्त से गुजरते हुए, मन से गुजरते हुए, देह और इंद्रियों के पास आती है वो आत्मा की शक्ति, वो प्रकाश, वो ऊर्जा, वो रूहानियत, और तब ये चैतन्य महसूस होते हैं, वरना ऐसे कैसे चैतन्य महसूस हो जाएंगे? ये तो जड़ है ना, पंच भौतिक शरीर कहते हैं ना इसको, पांच भूतों से बना हुआ, जो जड़ है सभी तत्व उनसे बना हुआ है, लेकिन उस चैतन्य शक्ति के कारण सब औचित्य से गुजरता हुआ इधर आ रहा है। अब इस चित्त की शुद्धि करना है। क्लियर हुआ चित्त क्या है? और अनकॉन्शियस माइंड की जब बात थी तो जैसे कहा कि अंदर स्टोरेज है पर वो इधर आ नहीं पा रहा है, यही हुआ ना अनकॉन्शियस माइंड माना। अंदर स्टोरेज तो है पर इधर आ नहीं रहा है। और कई बार आप देखेंगे कि हम सजग है, बेहोश नहीं है, उस कंडीशन में भी पिछले जन्मों का बाबा कहते सब कुछ स्टोर है, पर क्या हमारे सामने आता है? प्रकृति ने व्यवस्था कर डाली है कि पिछले जन्म वाले फोल्डर को पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर देती है, उसको लॉक लगा के रख देती है, खुलना नहीं तुमको, वहां से निकल के इधर नहीं आने का है, लेकिन प्रभावित करते रहेगी वो। इसीलिए तो कहते ना पिछले जन्मों का कोई हिसाब होगा, कोई ये होगा, कहते हैं ना, प्रभावित करेगा, पर वहां से निकल कर मन रूपी पट पर, स्क्रीन पर नहीं आएगा। वो कुछ कुछ अपवाद वाले किस्से होते हैं सिर्फ, और वो अपवाद वाले किस्से भी प्रकृति ने इसलिए ऐसा इंतजाम किया है कि जीवन की सच्चाई आखिर समझ में कैसे आए, तो कहीं कहीं अपवाद खड़े कर दिए ताकि उन अपवाद वाले किस्सों से बातों को आप समझ पाए कि पिछले जन्म का भी अंदर में स्टोर रहता है, पर सबके जीवन में वो लॉक खुलता नहीं है और नहीं खुलना चाहिए। हाँ, खुल गया समझो तो पिछले जन्म की जो मेरी माँ बाप थे और अभी जहां मैंने जन्म लिया है, वो माँ बाप से ज्यादा मैं किसको महत्व देना शुरू कर दूंगी? जीवन अच्छी चलेगी? हमने देखा है कई बार बच्चे गोद लिए जाते हैं ना, तो उसको बताया नहीं जाता है तुम्हारी माँ कौन सी है, क्योंकि उसको पता है कि अगर इसको सच्चाई पता चल जाएगी ना बच्चे को, बच्चे का मन यहां नहीं लगने वाला है, इसलिए सच्चाई नहीं बताते। वो तो कई बार जब बड़ा हो जाता है ना बच्चा, तो वो पूछता है मम्मी को, मम्मी ऐसा है? नहीं तो बेटा, नहीं नहीं चाचा जी बोल रहे थे, मामा जी बोल रहे थे। वो झूठ बोल रहे हैं, माँ ऐसे ही बोल देगी जबकि सच्चा बोल रहे हो, क्योंकि जीवन खराब हो जाएगी ना। और तब तक समझो अगर मामा जी चाचा जी ने बता भी दिया है, लेकिन अभी इतनी उम्र हो गई है कि संस्कार पक्के हो गए हैं, अब उतना असर नहीं करेगा, बता भी दिया तो भी नहीं करेगा इतना असर। तो ये बहुत सुंदर व्यवस्था प्रकृति ने की है। तो अनकॉन्शियस माइंड क्लियर हुआ? फिर लोग कई बार कहते हैं सुपर कॉन्शियस माइंड, सुना है ना ये शब्द भी, सुपर कॉन्शियस माइंड? ये क्या होता होगा सुपर कॉन्शियस माइंड? तो हम जहां तक बातों को समझते हैं, हम अपने बाबा के ज्ञान के आधार से हम कह रहे हैं। वैज्ञानिकों ने तो अलग अलग बातें दी हैं और अलग अलग उन्होंने शब्द दे दिए, तो कई बार बात वही होती है लेकिन शब्द परिवर्तन के कारण कंफ्यूजन बहुत क्रिएट हो जाता है। तो जो सुपर कॉन्शियस या परम चेतन मन जिसको कहते हैं, तो बाबा के ज्ञान के आधार से जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जैसे कहा ये बीच में चित्त है, ये इधर मन, मतलब ये दो पट हो गए ना सिक्के के, दो पहलू, बीच में मन है लेकिन दो पहलू है इसके, ये शरीर की तरफ है और ये आत्मा की तरफ है। ये इधर वाला डेटा इधर पे लाता है और यहां से इधर भेज देता है, और फिर जब डेटा नहीं भी है फिर इधर वाला इधर भेजता रहता है कि नहीं भेजता रहता है? जैसे कल आप बाबा की पहाड़ी जाके आए, है ना, तो वो कल की बात थी, कल एंजॉय करके आए, अभी तो क्लास में बैठे जो विषय चल रहा है वो सुन रहे, लेकिन मैंने अभी जैसे बाबा की पहाड़ी बोल दी तो कल वाला अनुभव जितने स्टोर पड़ा है आ जाता है कि नहीं आ जाता है सामने? आ जाता है ना, तो स्टोरेज में से निकल निकल के आता रहता है। तो मन बुद्धि, बुद्धि डिसीजन देती है, तो हम किस बात के लिए कैसा डिसीजन लेते वो भी जाके वही स्टोर हो जाता है। जो कुछ पढ़ रहे, जो याद करते, सब कुछ वो स्टोर हाउस है पूरा। और सिर्फ स्टोर हाउस नहीं है, आपके घर में भी, अगर समझो माँ बूढ़ी है, घर की बहू को कहती बेटा ये संभालो, ये स्टोर हाउस में रखो, तो सिर्फ रखने के लिए थोड़ी दिया उसको। या इवन दुकान में भी, जैसे सेल्समैन होते हैं तो सारा सामान बाहर डिस्प्ले में थोड़ी होता है, कुछ अंदर पड़ा होता है। और कुछ अगर डिस्प्ले में है भी, दुकान बहुत बड़ी है, इधर ये स्टॉक, उधर वो स्टॉक, उधर वो स्टॉक, तो सेल्समैन को सिर्फ ये इसलिए थोड़ी रखा है कि यहां से उठा के ये लेके आ, उसको याद भी रखना है कौन सी चीज कहां रखी हो तुमने। और हम कहेंगे फलानी चीज निकाल के लाओ, तो उसको मालूम होना चाहिए फलानी चीज मैंने कहां रखी थी, वहां भागेगा और वहां से लेकर आएगा। ऐसे ही होता है घर के स्टोर रूम में भी, हम याद रखते हैं कि नहीं रखते हैं कि फला चावल इस ड्रम में रखा है, ये इसमें रखा है, तो जब जिसकी जरूरत होगी उसके पास जाएंगे, खोलेंगे और उसको निकाल के लाएंगे। तो मन मनन करता है, चित चिंतन करता है, जो उसके पास इतना सारा स्टोरेज है वो चिंतन करता रहता है। इसीलिए कहते हैं मनन चिंतन करो, दो शब्द यूज करते हैं ना, मनन चिंतन करो। अब इस चित्त में बहुत कुछ, पहले क्या स्टोर हुआ इस चित्त में पता है आपको? सबसे पहले इस चित्त में अगर कुछ स्टोर हुआ है वो है आत्मा की ऊर्जा। जैसे बल्ब चला, फिलामेंट प्रकाशित हुआ, कांच पे क्या पड़ा है? प्रकाश पड़ा है। पहली लेयर किसकी है? प्रकाश की, चाहे इंटर में माना अंदर वाली, चाहे बाहर वाली, जो कांच का आंतरिक हिस्सा और कांच का बाहरी, दोनों में क्या है? पहली लेयर प्रकाश है, लाइट है, ज्योति है। लेकिन हमने सफाई नहीं की, रोज धूल मिट्टी उठ रही है, उस कांच पे चढ़ेगी या नहीं चढ़ेगी? और विशेष करके किचन के उस हिस्से में रखी हुई है जहाँ खूब पकोड़े तले जा रहे हैं, खूब छौक लग रहे हैं, खूब सीटियां कुकर भर भर के जबरदस्ती, हाँ, जिसमें से पानी यूं उछलता है, और हमने ध्यान नहीं दिया कुछ ही दिनों में क्या हो जाएगा। उस बल्ब से आने वाला प्रकाश कम हो जाएगा, और हमने ध्यान नहीं दिया अगर, तो प्रकाश कम 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 होते होते एक दिन आएगा, स्विच ऑन तो किया पर लाइट आई नहीं, ड्राइंग रूम से उठ के आई थी चलो अभी किचन का काम कर लेते, जैसे ही स्विच ऑन किया, अरे लाइट नहीं, क्या अभी तो मैं ड्राइंग रूम में बैठी थी वहां तो लाइट थी, फिर से एक बार जाके आते हम, देख के आऊं सचमुच लाइट गई है क्या, लाइट तो चालू है, इधर क्यों नहीं हो रही है, बल्ब फ्यूज हो गया क्या, क्या हुआ? कुछ कुछ बातें चलेगी मन में और हम उसको हाथ लगाने जाएंगे कि बदली तो करें अगर फ्यूज हुआ है तो। जब हाथ लगाने जाएंगे वो चिप 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 हाथ में लगेगी, थोड़ी बहुत चिप चिप अगर हाथ में आ गई किसी एक हिस्से से, तो उतना हिस्सा जहां से चिप चिप निकल के आपके हाथ में आ गई वो खाली हो गया, अरे ये तो लाइट है, दिखेगी कि नहीं दिखेगी लाइट? और फिर समझ में आएगा लाइट नहीं गई है, बल्ब फ्यूज नहीं हुआ है, मेरा ही बल्ब फ्यूज है जो मैं सफाई नहीं करती। समझ में आई? तो जब हम सफाई करेंगे तो अब कैसा प्रकाश आएगा। इसीलिए देखो दिवाली के दिनों में जब हम फुल सफाई करते हैं, न सिर्फ बल्ब और ट्यूबलाइट और इसकी, लेकिन घर का कोना कोना, एक एक वस्तु, अलमारियां, सबको, क्योंकि वो लाइट फिर वहां रिफ्लेक्ट होके भी तो आ रही है ना। तो सफाई के बाद हम कहते हैं आज घर बहुत चमक रहा है ना, आज लाइट बहुत ज्यादा दिख रही है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? क्योंकि सब कुछ साफ है तो उसका रिफ्लेक्शन फिर उतना ही अच्छा दिख रहा है और इसलिए हमको लगता है लाइट बहुत ज्यादा है। ठीक ऐसे ही चित्त पर भी बहुत कुछ जमा हुआ है। तो पहली लेयर है आत्मा ने जो भेजा। आत्मा को क्या कहते हैं? सच्चित आनंद है। बाबा ने क्या कहा? आत्मा प्रेम स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, जो सात गुण बताए हैं। तो आत्मा की वो प्रकाश उन सभी गुणों से युक्त है, जिसे चंद्रमा प्रकाश देता है, लेकिन प्रकाश के साथ साथ उस प्रकाश में शीतलता भी भरी हुई है। सूर्य प्रकाश देता है, लेकिन प्रकाश के साथ साथ उस प्रकाश में गर्मी भरी हुई है, ताप उष्णा भरी हुई है, उष्मा। ऐसी आत्मा जो ज्योति स्वरूप है, तो उसका प्रकाश तो आ रहा है, लेकिन प्रकाश की किरणें किससे युक्त है? जो आत्मा के गुण है उनसे युक्त है। और इसलिए चित्त की पहली जो लेयर है प्रकाश की, वो सारे गुणों से युक्त है। वो सारे के सारे गुणों से युक्त है। और इधर से जितना ज्यादा डेटा आएगा, इधर से रिफ्लेक्ट होना कम हो जाएगा, लेकिन यही वाला रिफ्लेक्ट होगा। और इसीलिए बाबा कहते हैं कि जब तुम पहली बार परमधाम घर से उतर के नीचे आते हो, तुम 16 कला संपूर्ण होते हो, तुम्हारी दिव्यता एक एक इंद्रिय से झलकती है। कल भी दीदी बता रहे थे ना कि संदेशियों ने जो ट्रांस में लक्ष्मी नारायण देखा, वो आर्टिस्ट को बताए तो कैसे बताए। दादी गुलजार के लिए भी बताते हैं ना कि दादी ने जब कृष्ण का साक्षात्कार किया, लेकिन वो बोल नहीं पा रही मैंने किसका किया, क्योंकि उसने देखा नहीं, और अगर उसको दिखाया भी, लेकिन उसकी और उसकी चमक और नए नक्श में जो तीखापन, उसमें तो उसको डिफरेंस दिख रहा है ना, तो वो तैयार ही नहीं बोलने के लिए कि इसका किया है। वो तो फिर कहते हैं कि मम्मा और मनमोहिनी दीदी, बड़ी ट्रिक के साथ एक एक बात पूछ पूछ के फिर फाइनली तय किया कि इसने क्या देखा है, श्री कृष्ण को देखा है। तो पहली लेयर जो हमारी होती है, और अभी इधर का इतना कुछ चढ़ा नहीं है, इतना बाहर निकल के आता है। इसीलिए तो ऐसा दिखाना पड़ा गोल चक्र पवित्रता का, वरना आज की डेट में दिखता है क्या? हाँ, इतने से हिस्से में भी तेज नहीं है, तो इतने हिस्से की तो बात ही छोड़ो। इतने से हिस्से में भी तेज नहीं है, लीपा पोती करके इसको चमकाना पड़ता है, है कि नहीं? और वो लीपा पोती कितना टेम्पररी, 1 घंटा 2 घंटा, जैसे ही उसका मेकअप उतर गया, अरे वही है क्या जिसको मैं जब भी मिली थी? अच्छा, तभी तो बहुत गोरी दिख रही थी, अभी तक सांवली दिख रही है, क्योंकि वो तो ऊपर का था, वो तो निकल गया, कोई अंदर से थोड़ी बाहर आ रहा था। तो इसीलिए जब बाबा कहते ना ज्वालामुखी योग करो, क्या मतलब होता है ज्वालामुखी योग का? ज्वालामुखी योग का कोई ज्वाला धधकने लगेगी क्या? हम भले कहते हैं योग अग्नि प्रज्वलित होगी, पर उसका मतलब क्या है? अग्नि शब्द इसलिए यूज किया, कोई अग्नि ऐसे किचन में भड़कती है वैसी अग्नि थोड़ी भड़केगी यहाँ पे। अग्नि शब्द इसलिए क्योंकि अग्नि को पावक कहा गया है, प्यूरिफायर है वो। तो परमात्मा से योग लगाते हैं तो आत्मा का प्यूरिफिकेशन होता है, और इसलिए उसको कहा योग अग्नि। और ज्वालामुखी कहा मतलब क्या? ज्वालामुखी कहा माना इतना तुम्हारा प्योरिफिकेशन हुआ है, माना ज्वाला इतनी इंटेंसिटी थी, माना प्योरिफिकेशन का प्रोसेस इतना गहराई तक हुआ है कि अब चूंकि प्योरिफिकेशन हो गया है, तो चित्त की पहली लेयर में जो आत्मा का है वो यूं फोकस बाहर आ रहा है, और पूरा चेहरा चमकने लगा है। तो मुख जब अंदर की लाइट से चमकने लगे, बाहर की लाइट से नहीं, बाहर के मेकअप से, कॉस्मेटिक से नहीं, बाहर से प्रकाश डालते हैं तो और ज्यादा दिखता है ना। कई बार लोग स्पीकर को देखते हैं, स्पीकर जब क्लास कराता है तो फोकस डालना पड़ता है, तो उसमें गोरा कलर ना हो तो भी दिखता है। और वही व्यक्ति स्टेज के नीचे आ जाए, कई बार लोग टीवी पे देखते हैं कईयों को, और फिर जब यहां आते तो पूछते हैं, मैंने फलाने को देखा वो कौन है, हम बोलते ये है, नहीं नहीं वो तो बहुत गोरे थे। तो वो तो बाहर का प्रकाश पड़ रहा है ना, समझ में आ रही बात। अंदर का होगा तो परमानेंट होगा, ये बाहर का प्रकाश तो जहां व्यवस्था हो रही उस समय आप गोरे दिख रहे, उस समय आप चमकदार दिख रहे हैं, लेकिन वो व्यवस्था हट गई, आपका अपना तो थोड़ी है वो चमक, आपका अपना भीतर का प्रकाश थोड़ी आ रहा है वो। तो ज्वालामुखी योग अर्थात भीतर का प्रकाश, अर्थात चित्त में जो इतनी सारी, फिर वो पहला था, मतलब पहला जब परमधाम से उतरे, लेकिन फिर जैसे हमारी यात्रा आगे बढ़ी, भले हमारे कोई कर्म विकर्म नहीं हुए, क्योंकि हमारी नेचुरल सोल कॉन्शियस स्टेज थी, परंतु नियम कहता है हर कर्म करेंगे उसकी छाप पड़ेगी। छाप पड़ेगी किस पे पड़ेगी, चित्त पे ही तो पड़ेगी। लेकिन चूंकि बुरा कर्म नहीं किया है, और बुरा कर्म नहीं किया का मतलब क्या है कि जो टेक्सचर है चित्त का उसी से रिलेटेड कर्म कर रहे हैं ना। टेक्सचर क्या है चित्त का, प्रेम शांति खुशी आनंद, ये टेक्सचर है ना। अब वही वाला हम कर्म कर रहे हैं, इसलिए उसकी जो छाप होगी इस टेक्सचर से मेल खाएगी कि नहीं खाएगी, समझ में आ रही। एक सफेद कपड़े पर मैं सफेद पेन से लिखती हूं, इंक से, इतना उठकर दिखेगा वो सफेद ही दिखेगा बिल्कुल रुमाल, लेकिन सफेद पेन रुमाल पर मैं काली पेन से लिखना शुरू कर दूं तो उतना हिस्सा भी सफेद नहीं दिखने वाला है। इससे क्या पता चलता है, अगर जो चित्त का टेक्सचर है, और टेक्सचर क्या है, आत्मा के गुण, कपड़े की टेक्सचर होती है ना, तो आत्मा के जो गुण है वही चित्त की फर्स्ट लेयर है, वही उसका टेक्सचर है, वही उसकी बनावट है, और उससे मेल खाता हुआ कोई कर्म करेंगे तो उसको कहेंगे सजातीय, है ना। तो सजातीय धर्म है ना, धर्म जैसा होगा कर्म वैसा होगा, इसीलिए दोनों शब्द साथ में लिए जाते हैं, धर्म और कर्म, क्योंकि कर्म से पहले धर्म, अर्थात कर्म करते समय अंदर की इंटेंशन क्या थी, क्या धारण किया हुआ था भीतर में। तो बाबा तो कहते हैं सत्युग में तो तुम आत्मा के जो सोल कॉन्शियस थे नेचुरल, इसलिए सोल कॉन्शियस के जो गुण है उसी आधार से कर्म में आ रहे थे, और इसलिए चूंकि वो कर्म उसी से मेल खाते हुए, इसलिए उसकी जो छाप पड़ रही इसके टेक्सचर को ज्यादा खराब नहीं कर पा रही है, समझ में आ रही बात। ट्रांसपेरेंसी कम हो रही है क्योंकि ऊपर से चढ़ रहा है थोड़ा बहुत, भले सजातीय चढ़ रहा है, लेकिन दो युगों के बाद तो क्या हुआ, फिर तो विजातीय चढ़ने लगा ना, देह में आ गए, देह कॉन्शियस में आ गए, फिर तो गुस्सा करने लगे। तो गुस्सा तो छोड़ो, ये मान्यता बदल दी मैंने अपनी, स्वयं के प्रति मान्यता कि मैं हूं आत्मा, लेकिन मैं कह रही हूं मैं देह हूं, तो स्वयं के प्रति जो मान्यता भी चेंज करते हैं वो भी तो उसमें ही स्टोर हो रही है ना। तो विजातीय गलत वाली मान्यता स्टोर की ना मैंने, तो चित्त क्या होता जाएगा, धुंधलाता जाएगा, समझ में आ रही बात। तो ये चित्त में अशुद्धियां भरी पड़ी है, और इसलिए चाहे मैं पवित्र स्वरूप हूं, चाहे मैं प्रेम स्वरूप हूं, चाहे मैं शांत स्वरूप हूं, पर वो उसको भेद के नहीं आ पा रहा है बाहर। समझ में आ रहा? इसीलिए हमने पहले दिन कहा था, कमेंट्रियों से योग बहुत कर लिया हमने, परंतु जो मेरा प्रेम स्वरूप, जो मेरा शक्ति स्वरूप बाहर बहाल हो जाना चाहिए, वो नहीं हो पाया है अभी तक। मैं ये नहीं कह रही थी बिल्कुल नहीं हुआ है, लेकिन जितना जितना कहा कि एग्जामिनेशन पास में आ गई है, तो उस हिसाब से जो हमारी गति होनी चाहिए, आज की जो हमारी स्टेज होनी चाहिए, वहां तक हम नहीं है अभी। अभी गैलप करने की आवश्यकता है, और गैलप करने के लिए नई नई मेथड्स अपनानी पड़ेगी। तो ये जो मेथड थी कोई गलत नहीं है, ये भी बहुत सुंदर मेथड्स है, लेकिन एडवांस भी तो करना पड़ेगा ना, ये भी करो, उसकी भी कोई मना ही नहीं है। लेकिन यहां तो हम परिवर्तन के लिए आए ना, खास कि मेरे भीतर कुछ परिवर्तन आ जाए। और वो भीतर परिवर्तन कब आएगा? सिर्फ कमेंट्री देकर नहीं कि मैं प्रेम स्वरूप हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, परंतु अभी उससे इतनी चित्त के ऊपर जो चढ़ी हुई अशुद्धियां हैं वो साफ नहीं हो रही है। और तभी पहले दिन कहा था, भीतर झांको, देखो मेरे जीवन में मेरे से वो कौन कौन सी बातें हुई हैं जो श्रीमद के खिलाफ है, उसको रियलाइज करो। जब आप रियलाइज करते हैं, जब उसको स्वीकार करते हैं, जब एक्सेप्ट करते हैं, अब बाहर की दुनिया में भी देखो ना, किसी ने हमारे साथ कुछ ठीक नहीं किया तो हम उससे मनमुटाव कर लेते हैं, लेकिन अगर वो आपके माफी मांगता है सच्चे दिल से, हम क्या करते हैं? हमारा मनमुटाव खत्म हो जाता है। बस ऐसे ही जब हम रियलाइज करते हैं, हाँ मेरे में ये है, मैंने ये बातें श्रीमद के खिलाफ की हुई है, लेकिन किसको बताना है? बाबा को बताना है, सबको नहीं बताना है बैठ के। बाबा भी कहते ना, उल्टी कहाँ की जाती है, बेसिन में की जाती है ना, ऐसे थोड़ी जहां तहां की जाती है, जहां तहां करोगे तो गंदगी फैलेगी, लेकिन प्रॉपर जगह पर बाबा को कहो, या जो निमित्त है जिन पर आपको पूरी आस्था है, क्योंकि छोटी मोटी गलतियां तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ एक जीवन में ऐसी बातें होती है, रह रहे के वही याद आ रहा है, रह रहे के वही याद आ रहा है। उससे मुक्ति कब मिलेगी? जब तक उसको स्वीकार नहीं करोगे कि सचमुच ये मेरे से गलत हुआ है, तो किसके सामने स्वीकार करोगे? पहले तो खुद मानो ना, महसूस करो, तब तो जाके बाबा को बोलोगे या निमित्त को बोलोगे। और ये कार्य करने से शुद्धि होती है, और यही कहा था हमने आपको पहले दिन। और इसी के लिए मौन की आवश्यकता होती है कि भीतर जाओ, भीतर चलता रहेगा। आप कहेंगे भीतर मौन तो कहा है, लेकिन भीतर तो चलता रहता है, उसी जो चल रहा है ना, उसी के आप वाचर बन जाओ ना, जैसे टीवी चल रही है सामने और आप देख रहे होते हो ना क्या चल रहा है, आपके चित्त में जो स्टोर्ड है, आपके हार्ड डिस्क में, आपके कैसेट में, वही तो पर्दे पे आता है ना, फिल्म पे, वो आ रहा है, आने दो ना, देखो ये है मेरे अंदर, ये होना नहीं चाहिए था पर है। ये स्वीकार किया, मन सफाई हुई, और जैसे ही सफाई होगी तो क्या होगा? ये चित्त जो सिर्फ बाहर की तरफ भटक रहा था, मन के पास लाला के दे रहा है ना अंदर का डेटा, गया था मन के ही थ्रू, लेकिन अब मन में ही वापस वो डेटा भेजता जा रहा है। लेकिन इस चित्त के पास आत्मा का भी तो डेटा है ना, तो अब चित्त को इधर मोड़ लो, चित्त को इधर मोड़ लो, और ये मोड़ना तब सहज होगा जब ये काम करेंगे। और जब चित्त इधर मोड़ने लग जाए, और वो फिलामेंट जो प्रकाशित है, जो आत्मा स्वयं प्रकाशित है, बस उसको देखती रह जाए। आप किसी भी इवन लौकिक दुनिया में भी किसी सौंदर्य को देख लेते हैं, टकटकी लग जाती है, लगती है कि नहीं, अवाक हो जाते हैं हम। ठीक ऐसे ही जब वो चित्त इधर भाग रहा है, तो जब हम उसको वॉच करते हैं, तो जितना भी उसके पास भरा हुआ देना भेज, जितना भेजना भेज, आखिर तो स्टोर खाली करेगा। और तब ये चित्त फिर इधर मुड़ेगा, और इधर मुड़ेगा तो इधर तो आत्मा है, और उसके सौंदर्य के, उसके प्रकाश को, उसमें से निकल रहे गुणों के वाइब्रेशन को वो अनुभव में खो जाएगा। आपको संकल्प चलाने की आवश्यकता नहीं कि मैं आत्मा हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं अनुभव कर रही हूं ना, मैं अनुभव कर रही हूं, और उस स्टेज में पहुंचकर मैं तुरंत ये मैं परमात्मा भी, क्योंकि चित्त में ये भी तो स्टोर किया है ना हमने डेटा कि परमात्मा मेरा पिता भी ऐसा ही है, हम दोनों परम धाम के, ये डेटा स्टोर है ना, तुरंत चले जाओ परम धाम, और परम धाम में जाके उसके सामने बैठ जाओ। अमृत वेले जब हम योग करते कुछ ना कुछ बाबा की महावाक्य बजते हैं, आज क्या बजा था, बैठ जाओ बाबा के पास परम धाम में, सिर्फ बैठ जाओ, बोलता नहीं कि आके मेरे से बात करो, क्या बोलता है, आके मेरे पास बैठ जाओ। जब उसके पास जाके बैठ जाएंगे, माना वो एक अलग तरीके की फिर भट्टी है, क्योंकि वहां का वातावरण, यहां तो फिर भी दुनिया का ही एक हिस्सा है, परंतु चूंकि यहां पे रूहानियत के वाइब्रेशन फैले हुए, तो उस दुनिया की भेंट में हम शांति महसूस कर रहे हैं, वरना यहां पे भी बोलचाल तो सब कुछ हो रही है, तो भी इतना अंतर महसूस करते, तो वो परम धाम जहां कोई दुनियादारी की चीजें नहीं, ना बिल्डिंग है, ना लोग है, ना कुछ है, जहां सिर्फ और सिर्फ गोल्डन रेड लाइट है, शांति शांति है, और पिता परमात्मा, और मैं जाके सिर्फ उसके भट्टी में बैठ गई ना मैं, वो भट्टी में चीज रखते हैं ना, फिर कुछ करते हैं क्या उसको, वो भट्टी में बैठ गई, उस भट्टी में बैठूंगी परमात्मा के वाइब्रेशन मुझ आत्मा पर काम करेंगे, और ऐसे काम करेंगे कि जो उसका स्वरूप, कहते हैं गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, एक मनुष्य भी बच्चे को जन्म देता है तो उसी की तरह दिखाई देता है बच्चा, तो भगवान हमारी सेटिंग ऐसे कर देंगे, उससे आने वाले प्रकाश की किरणें, गुणों के वाइब्रेशन मेरे को इतना प्यूरिफाई करेंगे, क्योंकि बाबा ने कहा ना, तुम जब परम धाम में थे तुम जैसे मैं हूं वैसा ही था, तो वैसी कंडीशन में मुझे पहुंचा देगा। इसी को कहा तीन बिंदु लगाओ, मैं भी बिंदी, बाबा बिंदी, और दुनियादारी का कुछ भी नहीं पता है मुझे, ड्रामा से संबंधित मेरे जीवन में रंगमंच वाली कोई बात वहां नहीं है, और वो अनुभव चाहे एक मिनट का ही क्यों नहीं हो, वो जबरदस्त परिवर्तन लाएगा। एक मिनट का भी अगर हम वो कॉन्वेक्स लेंस लेके सूर्य की किरणें केंद्रित करते हैं, तो इधर की तीली जल जाती है, लेकिन घंटों पकड़े हुए हूं मैं उसको, हिला रही हूं, उसके ऊपर धूल मिट्टी चढ़ी हुई है, उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया है, घंटों पकड़े रहो कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन हिलना बंद किया, कांच को साफ कर दिया, उसके ऊपर आवरण जो चढ़ा था उसको हटा दिया, एक मिनट में चमत्कार हो जाएगा, होगा या नहीं। तो चित्त शुद्धि किसे कहते हैं, तो जो पर ये जो मैंने कहा था ना, सुपर कॉन्शियस, जब चित्त इधर हो जाए आत्मा की तरफ, तो इसको कहेंगे ना सुपर कॉन्शियस, और वो उधर जाके फिर उधर हो जाए, समझ में आ रही बात, तो उसको ही तो सुपर कॉन्शियस कहेंगे और किसको कहेंगे। तो क्लियर हुई बात कि करना क्या है। हमें गैलप अगर करना है, एग्जामिनेशन पास में है, और अगर हम पास विद आनर होना चाहते हैं तो सिर्फ पास विद आनर की बात नहीं है, लेकिन जितना भी समय हम जिएंगे जो कि चित्त शुद्धि के साथ जिएंगे, चाहे कैसी परिस्थितियां आ जाए, भीतर का टेक्सचर तो मेरा क्या है, मैल हटा दी है, टेक्सचर क्या है मेरा, प्रेम खुशी का, तो हर परिस्थिति में क्या आएगा मेरे से, वही बाहर आएगा। यही तो अभ्यास है और क्या है, इस अभ्यास तक हमें पहुंचना है। ठीक है, तो चित्त जी अपने आप हो जाएगी ना। इसीलिए तो बाबा कई बार ये एक बात ये कहता है कि आके मेरे साथ परम धाम में बैठ जाओ, और कई बार एक दूसरा एडिशन करता है, बाप वाली स्थिति में बैठकर विश्व को सकाश, क्योंकि अपने आप जाएगा ना, सकाश अपने आप जाने वाला है। एक लालटेन को उसके कांच को मैंने साफ नहीं किया, लेकिन मैं बोल रही हूं कि अंदर की ज्योति इस लालटेन के कांच को भेद कर बाहर आ जाए, बाहर आ जाए, बाहर आ जाए, आएगी क्या, लेकिन मैंने साफ कर दिया, बोल नहीं रही हूं लेकिन आएगी वो। समझ में आई बात। तो ये है चित्त शुद्धि, क्यों चित्त शुद्धि करना है, और ऐसी चित्त शुद्धि ही हमें जो हमारा लक्ष्य है बाप समान बनना है, उस लक्ष्य तक हमें पहुंचा देगी। ओम शांति। तो अभी 7:30 तक योग, क्लैरिटी हो गई ना, योग करेंगे अभी शांत एकदम, अपने भीतर जो चल रहा है उसको वॉच करो।